समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती, जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो करिश्मा, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट करिश्मा राय एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनता से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ सी राजगोपालाचारी के जीवन और विरासत से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया।
यूनियन कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह सेज भारत टैक्सी कोऑपरेटिव इज टू एम्पावर ड्राइवर्स बाय प्रोवाइडिंग देम ओनरशिप ऑफ द वर्क। इंटरेक्ट्स विद ड्राइवर्स ऑफ भारत टैक्सी इन न्यू दिल्ली।
केंद्रीय मंत्री सर्वदानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु में 1,500 करोड़ रुपए के विभिन्न बंदरगाह परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
इंडियन एम्बेसी इन तेहरान अर्जेस इट्स नेशनल्स टू लीव ईरान एंड कॉशन्स देम टू अवॉइड एरियाज ऑफ प्रोटेस्ट और डेमोंस्ट्रेशंस।
और नेपाल में त्रिशली नदी में बस गिरने से 17 लोगों की मृत्यु।
एंड इन आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिम्बाब्वे टू टेक ऑन वेस्ट इंडीज इन द सुपर 8 क्लैश इन मुंबई। Yes, and now listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about India AI Impact Summit. In the heart of the nation's capital, where history meets ambition, a new chapter in technological leadership was written at the India AI Impact Summit held in the vibrant city of New Delhi. Distinguished leaders, innovators, researchers and visionaries from across the world attended the India AI Impact Summit 2026.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की सराहना की है। आज सोशल मीडिया पर संस्कृत में प्रकाशित एक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में भारत की क्षमताओं की वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रशंसा हुई है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के युवाओं की दूरदर्शी सोच मानवता को कितना लाभ पहुंचा सकती है। एआई इम्पैक्ट समिट का समापन एआई इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने के साथ हुआ, जो एआई पर वैश्विक सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
Yes, and the summit brought together policy makers, global tech CEOs, startup founders, academicians and AI pioneers. India does not see artificial intelligence merely as technology. It is a tool for empowerment, transforming agriculture, healthcare, education, governance and climate action. From smart crop prediction models aiding farmers to AI-powered diagnostics reaching remote villages, the message was clear. India's AI journey is people-centric.
बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्व व्यक्त किया है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट भविष्य में विश्व स्तर पे एआई के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। कल आकाशवाणी के अपने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि एआई इम्पैक्ट समिट के लिए नई दिल्ली में भारत मंडपम में कई देशों के नेता, उद्योगपति, नवप्रवर्तक और स्टार्टअप क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आए और उन्हें विश्व के नेताओं और तकनीकी क्षेत्र के सीईओ से मिलने का अवसर मिला।
कई देशों के नेता, उद्योग जगत के लीडर्स, इनोवेटर्स और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े लोग एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत मंडपम में एकत्र हुए। आने वाले समय में एआई की शक्ति का उपयोग दुनिया किस प्रकार करेगी, इस दिशा में यह समिट एक टर्निंग प्वाइंट साबित हुई है। समिट में मुझे वर्ल्ड लीडर्स और टेक्स सीईओस से मिलने का भी अवसर मिला। इस समिट में दुनिया को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली है। इस दौरान भारत ने 3 मेड इन इंडिया एआई मॉडल भी लॉन्च किए। यह अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी एआई समिट रही है। इस समिट को लेकर युवाओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। मैं सभी देशवासियों को इस समिट की सफलता की बधाई देता हूं।
वैश्विक डिजिटल महाशक्ति के रूप में भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करने देश के भीतर निर्मित प्रणालियों पर निर्भर करता है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है और भारत की आवश्यकताओं को उजागर करती हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व भर में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को नया रूप दे रही है। हाल ही में सम्पन्न हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में प्रदर्शकों ने प्रारंभिक पहचान, सटीक उपचार और स्मार्ट सर्जरी के उद्देश्य से अत्याधुनिक नवाचारों का अनावरण किया। और अधिक जानकारी के साथ प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
These AI-driven solutions seek to transform and strengthen the country's healthcare infrastructure through advanced technology. At the expo, founder of Earthswith Private Limited, Sandhya Srivastav, presented the company's first product, FlowGuard. Talking exclusively to Akashvani News, Ms. Srivastav said that the device uses artificial intelligence to enable smart IV fluid management. She also lauded the summit, saying that the event has provided large-scale exposure and big opportunity to early-stage startups.
IV fluid management is done with the help of AI with our app. When the drip is going to end, this indication is going to the healthcare professional and the doctors. Automatic closing system is also there. Via the app and the device, all the vitals of the patients also done. And that data has been captured for a week. Further, if we use that particular data in a future, we can do that. AI Summit done a very great job. It's a very good exposure for the initial startup.
Meanwhile, founder and chief technology officer of Tantris Dynamics, Abhay Devedi, said that his company is harnessing the power of AI to assist healthcare workers in the early detection of cervical cancer.
We are leveraging the power of AI to enable healthcare workers for the early detection of cervical cancer. That is to enable the healthcare workers so they don't have to need of the practitioner and gynecs for the results that need to be arise for cervical cancer. So we are making sure that every woman in this country gets screened by 2030, and that is our vision, that is aligned with the government of UP to screen 70% of the women till 2030. And we are showcasing our product here. We quite enjoyed a lot of products. We have got some improvements here only.
Mr. Devedi also noted that platforms like India AI Impact Summit help in strengthening innovation through global exchange of ideas and collaboration. With Ankit Kumar, Shivang Mishra, Akashvani News, Delhi.
विदेशी डेटा पर प्रशिक्षित एआई प्रणालियां भारत की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक बारीकियां या नीतिगत ढांचों को पूरी तरह से नहीं समझ सकती। इसलिए भारत को सैकड़ों भाषाओं और बोलियों, विविध सामाजिक आर्थिक स्थितियों और जटिल संरचनाओं वाले एआई की आवश्यकता है।
Yes, and AI must serve every citizen, not just those who speak English or live in metropolitan cities. Inclusivity is central to this mission. Indigenous AI models can help bridge digital divides, enhance public service delivery, and empower communities across the country. And if India can build AI systems that are indigenous, inclusive, and rooted in its realities, it won't just participate in the global AI revolution, it could help lead it. And built with the vision of creating AI systems specifically for India, Sarvam AI is an organization that is developing artificial intelligence tailored to India's needs by building foundational components and applying them to the country's unique linguistic, enterprise, and governance requirements. And the company has built a full-stack AI platform with everything developed, deployed, and governed entirely in India. These enterprise-grade platforms reflect the country's linguistic diversity and are designed to support public service delivery. Its work directly addresses long-standing barriers in accessibility, multilingual communication, and dependence on foreign AI infrastructure. Sarvam AI represents a critical pillar of India's domestic AI ambitions, aligning innovation with national priorities under the India AI mission. and by developing indigenous large language and speech models in Indian languages, Sarvam AI is expanding access to digital services, strengthening open innovation, and reducing reliance on foreign AI systems. It is also growing role in public service delivery, startup enablement, and responsible AI frameworks reflects the government's vision of technology as a tool for inclusive growth.
और इसके साथ ही श्रोताओं, इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ नवाचार को उजागर करता है। भारतीय भाषाओं में स्वदेशी मॉडल विकसित करके एआई डिजिटल सेवाओं तक पहुंच का विस्तार कर रहा है, खुले नवाचार को मजबूत कर रहा है और विदेशी एआई प्रणालियों पर निर्भरता को भी कम कर रहा है।
Yes, and so to conclude our discussion today, through a combination of strategic vision, governance safeguards, digital public infrastructure, multilingual platforms, a sectoral integration across agriculture, healthcare, education, skilling and local governance, AI has been institutionalized to augment human capacity rather than replace it. When embedded with principles of fairness, transparency and linguistic inclusion, AI strengthens last mile service delivery, enhances participatory governance and reduces structural inequalities.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Yes, and the Indian community in Israel is a vibrant and diverse group consisting of approximately 85,000 Jews of Indian origin and around 18,000 to 20,000 Indian nationals employed in various sectors. And the majority of Indian Jews in Israel hail from Maharashtra, known as the Bene Israelis, Kerala, known as the Cochini Jews, and Kolkata, known as the Baghdadi Jews. Many Indian nationals work in Israel as caregivers, diamond traders, IT professionals, and students. The Indian community organizes annual events such as the National Convention of Indian Jews in Israel, International Yoga Day, and other events to promote cultural exchange and bonding. We have a report from a correspondent in Jerusalem.
The Indian diaspora in Israel is a fascinating and unique chapter in the story of transnational communities. Israel was established as Jewish state in 1948, and it has been now a destination for many Jewish communities from around the world, including those from India. Among the Indian Jewish groups that have made Israel their home are Ben Israel, Cochin Jews, and Baghdadi Jews. The story of the Indian Jews in Israel actually begins with a long history of Jewish presence in India, dating back over 2,000 years. Indian Jewish communities such as the Ben Israel, the Cochin Jews and the Baghdadi Jews each have unique histories shaped by different migration patterns, interactions with local populations and cultural adaptation. Though these groups share a common religious identity, their experiences in Israel have been distinct, contributing to the rich mosaic of Israel's Jewish population. The Ben Israel, which means children of Israel, is one of the largest and most prominent Indian Jewish communities. According to the legend, they are descended from a group of Jews who were shipwrecked off the coast of India around 2,000 years ago. Over the centuries, the Ben Israel developed their own distinct practices, blending Jewish traditions with Indian culture. Actually, they have become the ambassadors of Indian culture in Israel. Their language is Marathi. It infuses some Hebrew words. And their rituals and customs are also influenced by Indian traditions, making them a unique bridge between Jewish and the Indian cultures. Likewise, the Cochin Jews also have their own story. They are also known as Malabar Jews. And it is another significant Indian Jewish community that found their way to Israel, their roots back to the southern coast of India, where they settled in the city of Cochin in Kerala. The history of the Cochin Jews is one of the peaceful coexistence and integration with local communities. They lived alongside Hindu, Muslim and Christian populations for centuries, and their cultural practices reflect the pluralistic society in which they thrived. On the contrary, the Baghdadi Jewish community hails from West Bengal, but they actually migrated from Syria and Iraq. This community has no long history of staying in India. Actually, they started coming in India in last 200 to 300 years only. With the formation of Israel as the homeland of Jews in 1948, this section of people known as Baghdadi Jews also started migrating to India. Now, these three communities, which we can call Indian Jewish community, have been integrating to Israel society, though earlier they had some issues with the Ashkenazi Jewish culture in Israel, but largely they are now accepted and they are part of Israeli Jewish community, and Israel has actually become the homeland of Jewish community from across the globe. Dheeraj Kakadia, Akashwani News, Jerusalem.
Yes, and from Jerusalem, we now turn attention to Kohima. And in a major boost to food safety and passenger welfare, Dimapur Railway Station at the Northeast Frontier Railway has earned the prestigious Eat Right Station certification from the Food Safety and Standards Authority of India. Besides former stations under the Alipurduar Division of Northeast Frontier Railway, also received the Eat Right Station certification. We have more on this from a Kohima correspondent.
In a proud moment for the region, Dimapur Railway Station under the Northeast Frontier Railway has been awarded the prestigious Eat Right Station certification by the Food Safety and Standard Authority of India. The certification, valid from 24th October 2025 to 23rd October 2027, comes after a rigorous and comprehensive audit of food stalls, catering units and food handlers at the station. The inspection assessed strict compliance with food safety norms, hygienic food preparation, safety storage system, scientific waste management practices and availability of nutritious food choices for passengers. Adding to the achievement, four more stations under the Alipurduar Division of Northeast Frontier Railway have also secured the Eat Right Station certification. These include Alipurduar Railway Station, Kokrajhar Railway Station, Kolanganj Railway Station and New Mal Junction Railway Station. The Eat Right Station initiative is part of Food Safety and Standard Authority of India's nationwide Eat Right India campaign aimed at promoting safe, healthy and sustainable food practices across the country. With this recognition, Northeast Frontier Railway has once again reaffirmed its commitment to enhancing passenger amenities and ensuring safe, quality and hygienic food at its stations. For Payakrama Asonyo from Kohima.
और इसके साथ ही अभिषेक अब चलेंगे उत्तराखंड, जहां की धरती एक बार फिर अपनी प्राकृतिक संपदा के दम पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाने जा रही है। सीमांत पिथौरागढ़ जिले के ठंडे और स्वच्छ जल में पाली जाने वाली प्रसिद्ध ट्राउट मछली अब विदेशी बाजारों तक पहुंचने की तैयारी में है। राज्य सरकार और मत्स्य विभाग की पहल से ट्राउट मछली का पहला कंसाइनमेंट जल्द ही दुबई भेजा जाएगा। यह पहल न केवल सीमांत क्षेत्र के मत्स्य पालकों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है, बल्कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस पहल के बारे में और अधिक जानते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता से।
पिथौरागढ़ की स्वच्छ और ठंडी जलधाराओं में तैयार की जाने वाली ट्राउट मछली अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। मत्स्य विभाग ने दुबई को निर्यात के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही पहला कंसाइनमेंट भेजे जाने की तैयारी है। हाल ही में दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में शामिल होकर लौटे सहायक निदेशक मत्स्य डॉक्टर रमेश सिंह चलाल के अनुसार, वहां के आयातकों और कंपनियों ने उत्तराखंड की ट्राउट में विशेष रुचि दिखाई है। गुणवत्ता, प्राकृतिक पालन पद्धति और स्वाद के कारण इसे प्रीमियम श्रेणी में देखा जा रहा है। विभाग इस दिशा में विस्तृत कार्य योजना पर काम कर रहा है।
दुबई में बहुत अच्छी मांग है हमारे ट्राउट की, तो हम इसीलिए इसको चैनलाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में हम लोग के पास लगभग 700 टन प्रति वर्ष का उत्पादन है और आने वाले 3 सालों में इसका उत्पादन हम जो है लगभग 5 गुना तक करने के प्रयास में है। जो हमारा ट्राउट प्रोडक्शन है, ये जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार की संभावनाएं निरंतर बढ़ती जाएगी।
राज्य सरकार द्वारा सीमांत क्षेत्रों में ट्राउट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हेचरी तकनीकी प्रशिक्षण और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहयोग दिया जा रहा है। पिथौरागढ़ वर्तमान में ट्राउट उत्पादन के मामले में उत्तराखंड के अग्रणी क्षेत्रों में शामिल है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
Yes, now on to Goa, and Goa's spiritual heritage is now drawing global attention. At the Goa Spiritual Festival, Goa Vision 2026 in Panaji, Union Minister Chirag Paswan said, Goa is not just about sun, sand and fun, but also about deep spirituality, rich culture and divine traditions. We have a report.
Speaking at the festival held at Taj Vivanta Panji, Mr. Paswan said development and spirituality are not opposite but complementary forces shaping India's identity and vision of a developed nation. He described the event as a symbol of cultural resurgence and said Goa represents a unique balance of modernity and spiritual depth. Union Minister Sripad Naik also attended the gathering along with Padma Shri awardee Sadhguru Brahmeshananda Acharya Swami and said such festivals strengthen cultural roots and inspire a value-driven progressive Goa. Speaking on this occasion, Mr. Paswan said that,
मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं मानता हूँ कि अध्यात्म आपको संजो के रखता है, आपको आगे बढ़ने का मार्गदर्शन देता है। ऐसे में मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ गोवा, जो स्पिरिचुअल फेस्टिवल के नाम से यहाँ पे 19 से 24 तारीख तक मनाया जा रहा है, उसका मैं भी भागीदार बना हूँ।
The Goa Spiritual Festival has reinforced the message that the state's identity goes far beyond tourism, highlighting its enduring spiritual and cultural legacy. For Parikrama, this is Mahesh Sobre from Panji.
Yes, and now some news from the BAFTA. Manipuri language drama film Boom has won the prestigious BAFTA award for Best Children and Family Film in London yesterday. The honor marks a significant milestone for Indian cinema, particularly for films from the Northeast, underscoring the global appeal of regional storytelling. Produced by Farhan Akhtar's XL Entertainment and directed by Lakshmi Priya Devi, the film derives its title from the Manipuri word for little boy. Boom tells the poignant story of a young boy growing up amid social and political unrest.
और इसके साथ ही आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में एआई युग में डीप फेक से सुरक्षा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसमें साइबर कानून विशेषज्ञ डॉ पवन दुग्गल और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ अनूप गिरधर भाग लेंगे। श्रोता हैशटैग आस्क एआईआर के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं और साथ ही विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं।
And to participate, simply dial the telephone number 011-2331-0481, 011-2371-7117, 011-2371-7106 and 011-2331-4444 from 9:30 p.m. onwards today.
और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। सबसे पहले बात क्रिकेट की करेंगे। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज सुपर 8 ग्रुप में मुकाबले में जिम्बाब्वे का सामना वेस्टइंडीज से होगा। मुंबई में यह मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा।
Yes, and on to some business news. Benchmark domestic equity indices. The Sensex and the Nifty rose over 0.5% today. The Sensex climbed 480 points to close at 83,295, while the Nifty advanced 142 points to settle at 25,713. And for more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
और श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
In today's episode, we remember social reformer Gadge Maharaj, who was born on the 23rd of February 1876 in Amravati district, Maharashtra. A public teacher, he wandered to different villages wearing his food pan upturned on his head and carrying his trademark broom. When he entered a village, he would instantly start cleaning the gutters and roads of the village. From the money that villagers used to give him, he built educational institutions, dharamshalas, hospitals and animal shelters.
Gadge Baba was highly influenced by Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. He donated the building of his hostel at Pandharpur to the People's Education Society, founded by Dr. Ambedkar. He used to cite the example of Ambedkar while urging the people to get educated, and said that education is not the monopoly of any class or caste. Baba Saheb also used to meet him frequently and had described him as the greatest servant of the people after Jyotirao Phule. We salute the great social reformer.
We also remember freedom fighters Ismail Khan and Abdul Ghani, who were martyred on the 23rd of February 1915 during the Singapore Uprising. They were soldiers in the 5th Light Infantry Regiment of the British Indian Army at Singapore. On the 15th of February 1915, their regiment was getting ready to embark on a voyage to Hong Kong from Singapore. From there, they were to be sent against their will to Europe to take part in the action against Germany during the First World War.
Ismail Khan, who was influenced by the Ghadar movement, fired at an ammunition lorry from the quarter guard near Alexandra Barracks. Abdul Ghani and other Indian soldiers also joined him, killing many British officials and European civilians. Following a violent clash, the soldiers, who mostly belonged to the regions of Punjab and Haryana, were captured. They were charged with having broken oath as soldiers of the Crown and sentenced to be shot dead. 23 Indian soldiers were placed against the stakes under the open sky and shot dead on the 23rd of February 1915. We salute the great martyrs.
We also remember martyr Abdul Ali, who died while participating in a demonstration in support of the Royal Indian Navy Ratings Rebellion on the 23rd of February 1946.
The ratings of the Royal Indian Navy battleship HMIS Talwar, docked at Bombay, went on strike on the 18th of February 1946 over the issues of bad food and adverse living conditions. Following their capture of the naval trucks, the ratings went all out to urge the people of Bombay to rise in support of their uprising, which was spread to 78 ships and 22 units all along the Indian coastline.
In response to their call, several possessions were taken out in Bombay. Abdul Ali received severe bullet wounds in the British police firing on a demonstration he took part in Bombay on the 23rd of February 1946 and died on the same day. We salute the great son of the soil.
Yes, and we're also remembering Madhubala, born Mumtaz Jehan Begum Dehelvi, who passed on this day in 1969. She was an actress who worked in Hindi films. She's regarded to have one of the greatest and finest actress in the history of Indian cinema. And one of the country's highest paid stars in the 1950s, Madhubala appeared in over 70 films, ranging from slapstick comedies to historical dramas in a two-decade-long career. Long after her death, she remains a Bollywood icon, particularly noted for her beauty and unconventional screen persona. Media outlets often refer to her as a Venus of Indian cinema.
Sayed Khani ke andhere kanis ki arzuon ki roshni se kab the?
Andhere aur badha diye jayenge.
Arzuon aur badh jayengi. Aur zille ilahi ke insaan, jo zuban unke samne mohabbat ka iqrar tak na kar saki, wo inkaar kaise karegi? Parvardi ka. مجھے اتنی ہمت عطا فرما کہ میں صاحب عالم سے بے وفائی کر سکتا یعنی ذلِ الٰہی کا حکم بجلانے کی کوشش کرے گی
کوشش نہیں تعمیر ہوگی اسے آزاد کر دیا جا
تو فلم مغلِ اعظم کا یہ ڈائلاگ سن رہے تھے آپ جس میں انارکلی کی ان کی بھومکا آج بھی بے حد یادگار مانی جاتی ہے بہت ہی کم عمر میں انہوں نے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنی خوبصورتی تتھا ابھینے سے درشکوں کے دلوں میں خاص جگہ بنائی تھی اس کے علاوہ انہوں نے محل چلتی کا نام گاڑی اور برسات کی رات جیسی فلموں میں ان کا جو ابھینے تھا وہ درشکوں کو خوب پسند آیا
And we are also remembering John Keats, who passed on this day in 1821. He was an English poet of the second generation of romantic poets, along with Lord Byron and Percy Bysshe Shelley. His poems had been in publication for less than 4 years when he died of tuberculosis at the age of 25. They were indifferently received in his lifetime, but his fame grew rapidly after his death. By the end of the century, he was placed in the canon of English literature, strongly influencing many writers of the pre-Raphaelite Brotherhood. The Encyclopedia Britannica of 1888 described his Ode to a Nightingale as one of the final masterpieces.
और इसके साथ ही श्रोताओं आज प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक अभिनेता और निर्माता विजय आनंद की पुण्यतिथि है वे हिंदी सिनेमा के प्रतिभाशाली फिल्मकारों में गिने जाते हैं और बेहतरीन निर्देशन शैली के लिए भी जाने जाते हैं विजय आनंद ने कई सफल और यादगार फिल्मों का निर्देशन किया उनकी प्रमुख फिल्मों में गाइड ज्वेल थीफ और जॉनी मेरा नाम शामिल है उनकी फिल्मों में कहानी कहने का खास अंदाज और संगीत के साथ दृश्य प्रस्तुति की सुंदरता देखने को मिलती थी हिंदी सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान मिले हैं
तुमने उससे अपनी जिंदगी मांगी थी ना उसने अपनी जान दे दी उसने मुझे मजबूर किया था कि मैं तुमसे शादी करूं तुम्हारी मांग का सिंदूर भी उसकी मेहरबानी है। तुम्हें अपनी सुहागरात याद है। मैं तुम्हें इसी कमरे में अकेला छोड़कर चला गया था।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के संग को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए करिश्मा राय और अभिषेक मुखोपाध्याय को।
नमस्कार, नमस्कार।